आज की सांध्यकालीन बेला में हमारे बीच संतों का दरबार सजने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी ये मंच खाली है, लेकिन कुछ ही पलों में हमारे बीच आज अयोध्या की पावन धरणी से पधारे हुए संत अपना अपना स्थान लेने वाले हैं। और आपकी तालियां कह रही हैं कि उनका प्रवेश इस सभागार में हो चुका है। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने मध्य में राजयोगी भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय जी एवं जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता अयोध्या पधारे हैं। निवेदन करूंगी मंच पर पधारे। माननीय महामंडलेश्वर महंत आशुतोष जी महाराज, श्री श्री 108 निर्मोही घाट अयोध्या से पधारे हैं। और हमारे बीच महंत गिरीश दास जी महाराज, मेरा निवेदन है मंच पर आप भी पधारें। आप भी निर्मोही घाट से हैं, अयोध्या से पधारे हैं। और हमारे बीच में हैं पीठाधीश्वर महंत श्री बलराम दास जी महाराज। आज के इन सुहाने पलों में जहां हम संत शिरोमणि अपने बीच देख रहे हैं, वहीं जो आज हमारे बीच नहीं है अव्यक्त हो गई आदरणीय दादी जी, संत शिरोमणि से कम नहीं। उन्होंने विश्व बंधुत्व का जो अलख जगाया था वो अपने आप में बहुत अद्भुत था, और थोड़ा नहीं बहुत अद्भुत। अद्भुत किन शब्दों में मैं बयां करूं, जो उच्च थी दृष्टिकोण में, उत्तम थी विचार में, उद्भव था हर नई पद्धति में, उदय था उमंग उत्साह में, उभार था व्यक्तित्व में, उन्नति थी स्वयं के ध्येय में, और उमंग था हर एक को प्रोत्साहन देने में, उदार थी प्रत्येक सहयोगी के साथ, उत्कृष्ट थी अच्छे से अच्छा बनाने में, और उजागर कुलभूषण थी ब्रह्मा की पुत्री थी। ऐसी आदरणीय दादी जी जिन्होंने विश्व के कल्याण की एक अलख जगाई, और वो अलख न केवल भारतवर्ष के कोने कोने तक आलोकित हुई, प्रकाशित हुई, वरन विश्व में प्रकाशित हुई। और इसीलिए दादी जी को विश्व वंदनीय रूप में हम सब महसूस करते हैं। अभी हमारे बीच में हम आवाहन करेंगे दादी जी के जीवन की कुछ झलकियां। हमारे एनिमेशन डिपार्टमेंट पीएम पार्क से यहां दिखाई जाएगी, तो उसकी व्यवस्था दादी जी की जीवन झलकियों की कृपया प्रारंभ करें।
कुछ दिव्य सितारे समय प्रति समय खुदा का पैगाम इस समय पर निकलते हैं। जिस प्रकार आसमान के तारों में कुछ तारों का विशेष मान होता है क्योंकि वे विशेष समय पर निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार इस जगत को रोशनी देने हेतु कुछ दिव्य सितारे समय प्रति समय खुदा का पैगाम लेकर धरती पर दिव्य जन्म लेते ही हैं। उन दिव्य सितारों में से एक नाम दिव्य आभा मंडल लिए हमारी दादी प्रकाशमणि जी का ही है, जो अपने महान कर्तव्य के द्वारा दुनिया में असंख्य लोगों के जीवन में रोशनी भरने के निमित्त बनी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विशाल आध्यात्मिक संगठन का सफल नेतृत्व करते हुए दादी प्रकाशमणि जी ने अपने जीवन काल में विश्व कल्याण का परचम लहराया। ऐसी महान विभूति का जन्म दीपावली के शुभ दिन पर सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में हुआ। दादी जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। उनका इस संस्था में एक स्नेहमयी लगनशील आज्ञाकारी कुमारी के रूप में पदार्पण हुआ। उस समय इस संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 14 वर्ष के अल्पायु में ही अपना जीवन मानव कल्याण हेतु प्रभु अर्पण कर दिया। आप परमात्म शिक्षा से प्रेरित होकर अपने जीवन में पवित्रता, शांति, प्रेम, सरलता, दिव्यता, नम्रता, निरहंकारिता जैसे विशेष गुणों को अपनाकर आध्यात्मिक प्रकाश को फैलाने और मानव को महान बनाने के कार्य में सफल रही। सन 1969 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने आध्यात्म की मशाल दादी जी को सौंप दी और स्वयं संपूर्ण बन गए। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के पश्चात दादी जी ने संपूर्ण मानवता की सेवा करते हुए एक विशाल आध्यात्मिक संगठन को साथ लेकर विश्व के सेवा के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने विभिन्न जाति, वर्ग, रंग भेद को दूर करने के लिए मानवता में विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को जगाने के लिए आत्मिक एवं प्रभु संतान की स्मृति दिलाई तथा परमात्मा अवतरण के ईश्वरीय संदेश को अल्प समय में संपूर्ण विश्व के क्षितिज पर गुंजायमान किया। सफल नेतृत्व के साथ साथ सबको हर पल हर क्षण प्रेरणा दे मानवता में एक नई जान फूंकने वाली चमत्कारी व्यक्तित्व की धनी परमात्मा के कार्य को उन्हीं के समान करने के निमित्त हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, जिनकी मुस्कान अनेकों के कष्ट हर लेती, जिनकी दृष्टि पाने के लिए लोगों के कदम रुक जाते, जिनके सफल प्रशासन को देख सभी प्रशासनिक अधिकारी उनसे यह कला सीखना चाहते, जिनकी पवित्रता व सरलता पर स्वयं भगवान भी बलिहार जाते, जिन्होंने अनेकों को जीवन दान दिया, जिन्होंने प्यार देकर अनेकों को जीना सिखाया, ऐसी थी हमारी महान दादी प्रकाशमणि। ऐसी महान विभूति दादी जी ने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया के निर्माण हेतु अव्यक्त यात्रा को प्रस्थान किया। ऐसे विरले व्यक्तित्व को हम सभी का सहृदय सम्मान व शत शत नमन। जिस प्रकार आसमान के तारों में कुछ तारों
हमारे बीच पहुंच रही हैं बहन दीपिका जी, दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी काव्य गरिमा के साथ पेटलाद मणिनगर से। मैं उनका आह्वान करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ रखें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज दादी जी के स्मृति दिवस पे मैं दादी जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी। भल दादी जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भावनाएं दादी जी तक जरूर पहुंचेगी। कहते हैं कि दादी माँ शब्द में वो सामर्थ है, अगर किसी नाम के साथ जुड़ जाए तो उसे रिश्तों के शिखर पर लाकर खड़ा कर देती है। दादी माँ आपके चेहरे की एक मुस्कान बेजान में भी जान डाल देती है, और आपके कदमों की आहट कुछ कर गुजरने की उम्मीद दिला जाती है, और आपका ये उन्नत ललाट स्वयं भगवान को दर्शन करा जाता है, और आपका एक स्पर्श दादी जी पत्थर दिल को भी पिघला देता। सचमुच ऐ खुदा, तुमने बड़ी मेहनत और रूहानी नाजों से इस स्वयं स्वरूप को गढ़ा होगा। ओ खुदाई आफ्ताब दादी माँ, आप तो बेमिसाल हैं। आपकी महिमा ये जहां तो क्या कहेगा, लेकिन आज सबकी तकदीर लिखने वाला वो भाग्य विधाता भी आपकी तकदीर पे फक्र कर रहा होगा। जिस तरह अंबर से गिरने वाली बूंदों को अपने दामन में समेट लेना नामुमकिन है, उसी तरह दादी जी आपका हम पर उन तमाम एहसानों को बयां करना भी कल्पनातीत है। पर फिर भी आज आपकी मेहरबानियों से भरा दिल सचमुच कुछ कह देना चाहता है। यकीन नहीं होता वक्त के जज्बातों पर, यकीन नहीं होता वक्त के जज्बातों पर तकदीर ने हमारी उन रंगीन ख्वाबों को कैसे हकीकत में तब्दील कर दिया। दादी जी आज आपकी स्मृति दिवस हमें ये एहसास दिला रही है कि उस रूहानी चांद ने अपनी आभा को तुम्हारे रूप में तुम्हें हमारे पास भेजा है। मैंने भी हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, परंतु सालों साल देखा दादी जी को, उनके चेहरे पर न कभी थकावट देखी। तुम्हें स्नेह की सबिता कहूं या करुणा की गाथा, प्यार की मूरत कहूं या माँ की ममता, इस हृदय में लुप्त रहती हो ऐसे सदा, असमंजस में हूं आज मैं कि साक्षात भगवान कहूं या उनकी गौरव गाथा। सर्व दिलों की सहजादी दादी जी, आज न जाने कितने नजारे इन फिजाओं में दिखे, मगर कोई नजारा इन निगाहों को भाया नहीं। तुमको देखा तो नजरें भी कहने लगी कि उस रब ने तुम सा किसी को बनाया नहीं, उस रब ने तुम सा किसी को बनाया नहीं। ओम शांति, थैंक यू सो मच।
अपनी भावनाओं को व्यक्त कर गईं और हम सब में एक ऊर्जा भर गईं। अभी हमारे बीच हमारे कार्यकारी सचिव राजयोगी डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी, जिन्होंने बाल्यकाल से आध्यात्म का अपने जीवन में संरक्षण किया, आज संतों महात्माओं के साथ दक्षिण भारत में न जाने कितने मठों में उनके सानिध्य में रहे, लेकिन 1968 का एक वक्त ऐसा आया जिसने आपको परमात्मा परिचय दिया, और आप 1968 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सानिध्य में आए। उसके बाद वहां सेवाएं करते हुए आप मुख्यालय पहुंचे। आज लगभग 50 वर्षों से आपने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और आज सेवाओं का यह आलम है कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी सचिव हैं, गवर्निंग मेंबर हैं मैनेजमेंट कमेटी ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के। एजुकेशन की जगत में आपने झंडे गाड़ने शुरू किए, एक नहीं दो नहीं, आज अनेकों यूनिवर्सिटीज से आपने संपर्क करके इस आध्यात्मिक ज्ञान को वहां के सब्जेक्ट्स में एक अनमोल विषय बनाया। शिक्षा प्रभाग के आप अध्यक्ष हैं, आपने क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ को लेकर के एक अलग जगाया और लाखों वृक्षों का यहाँ रोपण किया, माने पौधे यहाँ लगाए गए, आज वट वृक्ष बन गए। आप राष्ट्रीय संयोजक लिविंग वैल्यू एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स के साथ ही साथ कुछ नया करने की ख्वाहिश आपको हुए माई की ओर ले गई। आपने 3D मेडिटेशन शो बनाया, लेजर शो ऑन वाटर स्क्रीन को भी प्रेरणा देकर यहाँ स्थापित किया। निरंतर गतिशील, और ये गतिशीलता न जाने कितनी बार इस दुनिया को मजबूर कर चुके कि उनका सम्मान करे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों आपको अवार्ड मिले, लगभग 50 देशों से अधिक आपने भ्रमण करके देश विदेश में अलग जगाया। मैं भ्राता जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर पर कुछ कहें, दिशा बदल दें, दशा बदल दें, जीवन का अंदाज बदल दें, सद्भावों के मोती लेकर मानव का अंदाज बदल दें। भ्राता नृसिंह जय जी।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की सुदर में सदा स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम के यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले समस्त विश्व ब्रह्म कुमार कुमारी बहनों को मैं इस विशेष परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति दिवस पर और समर्थ दिवस पर विश्व बंधुत्व के रूप में हम लोग आचरण कर रहे हैं, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड के रूप में आचरण कर रहे हैं। ऐसी दिवस पर हमारा विशेष अयोध्या से आए हुए जगतगुरु स्वामी जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओके सर, हाँ जोर से ताली बजा करके स्वामी जी से अभिवादन करें। उसके साथ दो महामंडलेश्वर स्वामी जी भी उपस्थित है, उनको भी हम जोर से ताली बजा करके दादी की तरफ से अभिवादन, और उनके साथ समस्त आए हुए सभी अधिकारीगण, उसका शिष्यगण, उनकी साथ में चलने वाले भाई बहनों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदि में आदि पिता पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को सर्वप्रथम साक्षात्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था। उधर कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इसके लिए उत्तर प्रदेश और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक अनादि, एक अविनाशी, एक निरंतर संबंध है। साथ साथ में इतनी उत्तर प्रदेश की भाई बहनों के साथ स्नेह प्रेम, परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का, दादी गुलजार दादी का, दादी जानकी जी का, और ब्रह्मा बाबा खुद उधर जाके आए थे कानपुर में, इलाहाबाद में, अन्य स्थानों पर भी। इसके लिए इस समय इलाहाबाद से व उत्तर प्रदेश से इधर से आए हुए सभी जगत गुरुओं को मैं पुनः स्वागत करता हूँ, क्योंकि जगत गुरु दादी के प्रति बहुत स्नेह है, प्रेम है, सद्भावना है, शुभ भावना है। साथ साथ में इस दिवस को और भी एक विशेष दिवस के रूप में हम लोग दादी का यादगार के रूप में मना रहे हैं। राइज इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम द्वारा भारत का उत्थान। अभी तो हम भारत के उत्थान के प्रति इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, अदर एम्पावरमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, परंतु स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के बारे में सही दिशा है, उस दिशा में हम लोग कहीं ना कहीं टूटी है, परंतु उस टूटी को, वो कमी को, वो कमजोरी को हम लोग ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक क्रांति के रूप में, राजयोग की शिक्षा के रूप में, मूलिक शिक्षा के रूप में हर वर्ग को ये शिक्षा दे करके हम इस भारत को पुनरुत्थान करके भारत को दैव स्वराज बनाने के लिए, भारत को राम राज्य बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य में हम सभी संलग्न है। लगभग 8,500 सेवा केंद्र के माध्यम द्वारा 1,147 कंट्रीज के माध्यम द्वारा मोर देन 15 लाख भाई बहनों के माध्यम द्वारा इस देश को और इस विश्व को एक नया आयाम देने के लिए, नया दिशा देने के लिए, नया एक राइज करने के कार्य में हम लोग जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम को कुछ ही दिन पूर्व में हमारा देश के वर्तमान समय का महामहिम राष्ट्रपति मैडम ने भी उद्घाटन किया था। इसका देश के कोने कोने में जाकर के इस आध्यात्मिक शिक्षा को देने का कार्य भी हम आरंभ कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सबका भी स्वागत है, इसके साक्षी आप सभी। मेरा ये सौभाग्य था परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के साथ लगभग 40 ईयर्स हमारा जीवन उनके साथ, उनके सामीप, उनके सानिध्य में रहते हुए उनका शिक्षा, उनका वरदान, उनका ब्लेसिंग, उनकी दृष्टि प्राप्त करके इस ईश्वरीय सेवा करने का मुझे मौका मिला था। वो घड़ी, वो समय हमारा जीवन का अविनाशी बन करके जीवन को एक उन्नत मत के जाने के लिए, देवत्व मत के जाने के लिए, परिश्रम बनने के लिए माध्यम बना। इसके लिए परम आदरणीय दादी जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, भाव भी अर्पित करता हूँ। साथ साथ में आज के इस समय में हम लोग बहुत कैंपेन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तो नशा मुक्त भारत बनाने के। इस समय में सारे देश में, सारे विश्व में, हर एक स्थानों में कहीं ना कहीं नशा के वशीभूत हो गए। इस नशा मुक्त होकर के आत्माभिमानी बनने का, अशरीरी अनुभव करने का, परमात्मा का सानिध्य सामीप्य और आत्मा बन करके परंधाम को उड़ने का, बाबा ने कहा था इस स्थान को एक स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनेंगे, स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बना आत्मा उड़ने का, उसका अनुभव भी हम कर रहे हैं। ऐसे समय पर इतने बड़े महान स्वामी जी, जगत गुरु स्वामी जी उपस्थित हमारे सम्मुख में, वो साक्षी है। और साथ साथ में अनेक बार दादी जी, अनेक बार संत समागम, संत सम्मेलन, संतों का आगमन का इधर बुला करके उनका सम्मान करना, सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उनके माध्यम द्वारा भारत का एक नया दिशा दिखाने का काम दादी ने किया। इसके लिए नारी की शक्ति को जागृत करने का कार्य यदि इस देश में, इस विश्व में, इस धरती पर अधिक से अधिक कार्य किया है तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसके लिए नारी की शक्ति को एक देवत्व की तरफ ले जाने का, और इसकी माध्यम द्वारा, इनके माध्यम द्वारा भारत को, अभी अभी हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव भारत सरकार से मिलकर के बनाया, परंतु हम केवल अमृत महोत्सव ही नहीं, अमृत महोत्सव से आगे के लिए भारत को आजादी से अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने का, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमारा मन शुद्धि, तन शुद्धि, भाव शुद्धि, संबंध शुद्धि, भ्रातृत्व भाव को हमको अपनाना होगा। उस भाव के लिए आध्यात्मिक शक्ति का, राजयोग का अति आवश्यक है, इसको शिक्षा। और एक बातें मैं सुना करके अधिक समय नहीं लेंगे, परम आदरणीय दादी अमेरिका में फर्स्ट टाइम जब गए थे, वहाँ का वाशिंगटन डीसी में वहाँ का मेयर ने दादी को एक सम्मान करके, उन्होंने एक ट्री प्लांटेशन कहते कैपिटल हिल, जैसे पार्लियामेंट हाउस में भारत में ऐसे कैपिटल हिल के सामने एक ट्री प्लांटेशन करके उसका नाम रखा था ओम शांति। और उसके साथ साथ इन्होंने ग्रीन द अर्थ के प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग करते हुए उन्होंने एक प्लांटेशन किया था, उसका नाम रखा ओम शांति ट्री। अभी भी हर साल जून 10 तारीख वहाँ का गवर्नर ने, इन्होंने प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया 10th डे ऑफ जून इज डिक्लेयर्ड एज अ दादी प्रकाशमणि डे। इस प्रकार का वहां अमेरिका में भी दादी का घंटा बजाया और साथ साथ में वो प्लांटेशन अभी बहुत बड़े ट्री बन चुका है और वहां की जो पार्लियामेंटेरियन थे, प्रेसिडेंट आदि सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की बड़ी थी उधर आकर के। ऐसे तो बहुत उदयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा दादी को डॉक्टरेट डिग्री देकर के उनको अभिवादन किया, सम्मान किया था। ऐसे बहुत बातें हैं पर बताने के लिए, परंतु भाई हम सभी इसके लिए हम उपस्थित है जगत गुरु जी का आशीर्वाद, आशीर्वचन और उनका ब्लेसिंग और उनकी प्रेरणा देने सुनने के लिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश से जो भी भाई बहन आए हैं उनके लिए विशेष हमारा दिल से स्थान है, बाबा का दिल में स्थान है और मधुबन में सभी भाई बहनों का स्थान है। उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्य शुरुआत होता है वो सारे विश्व में व्यापक जिससे चर्चा होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश भी उत्तम जनता के माध्यम से उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत भी देवी भारत बन सकता है। ऐसी भारत को बनाने के लिए जिस आज के दिन में पुनः हम प्रतिज्ञा करते हैं, दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भाव दीदी दादी को नमस्कार करते हैं, ओम शांति कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
भ्राता मृत्युंजय जी ने अभी आपके सामने अपने हृदयोद्गार रखे और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब उन्होंने ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड का आयोजन किया, अलग जगाया। मैंने खुद प्रयागराज में 5,000 वृक्षारोपण किया, पौधे लगाए और केवल लगाए नहीं, उन्हें तब तक देखा जब तक कि वो बड़े नहीं हो गए। बराबर उनका संरक्षण हो रहा है या नहीं इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया। तो लोगों ने इसका एक मिशन बना करके वहाँ अभी भी उसे जारी कर रखा है। मैं मधुर वाणी ग्रुप जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आन बान शान है, आज अपनी श्रद्धांजलि, मेरी दादी तुम पारस मणि, मेरी दादी तुम पारस मणि, पारसनाथ के साथ कैसे रही दादी ये स्पष्ट करने जा रहे हैं अपनी भावांजलि द्वारा।
हेलो 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 हेलो, ओम शांति। ओम शांति। एक विशाल संगठन को कैसे एक सूत्र में बांधा था, तुम विराट व्यक्तित्व रही पर जीवन सीधा सादा था। ऐसे प्रेम स्पर्श देने वाली प्यारी दादी माँ, हे रत्न प्रभा दादी प्रकाशमणि, हे ज्योति प्रभा दादी प्रकाशमणि, वो हमारे साथ प्रेम का प्रकाश बिखेर रही हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ दादी जी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
प्रभा दादी प्रकाशमणि, ज्योति प्रभा दादी प्रकाशमणि मेरी प्यारी दादी प्रकाशमणि मेरी मीठी दादी प्रकाशमणि
दाद
तुम पारस मणि।
हमारे बीच पधार रही हैं ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन ज्ञान सरोवर से, जो मल्टीमीडिया की रूपरेखा बनाया करते हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर स्थान कृपया ग्रहण करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ये आध्यात्म का पंथ कृपाण की धार बराबर होती है। बाल्यकाल से ही हमारे संत शिरोमणि महंत आशुतोष जी महाराज, जिन्होंने बचपन से इस आध्यात्म के पथ पर गुरु सानिध्य पाया, प्रभु सानिध्य पाने के लिए प्रयत्नशील हुए, और 1992 से आपने कुंभ मेले में कैंप लगाकर जन जन को संदेश दिया। नासिक और हरिद्वार से आपने सेवाएं की, अनवरत करते चले आ रहे हैं। अयोध्या के उस सरयू के जल में अद्भुत अलौकिकता है। मैं महामंडलेश्वर श्री श्री 108 निर्मोही घाट महंत आशुतोष जी महाराज से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपनी श्रद्धांजलि आदरणीय दादी जी को अर्पित करें।
सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्ज मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्री धाम अयोध्या, मंच पर विराजमान हनुमानगढ़ी सुप्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर महंत बल्लामदास जी महाराज, मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर महंत श्री गिरीशदास जी महाराज, हमारे अनुज गुरु भाई गौरवदास जी महाराज, मंच संचालन कर रही राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मनोरमा दीदी जी, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका प्रयागराज ब्रह्म कुमारी, सम्मुख विराजमान हमारे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम ब्रह्म कुमारी ब्रह्मा कुमारी की पूर्व प्रशासिका मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 16वें पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम प्रकाश डालना चाहेंगे दीदी जी के जीवन पर। एक बार जोरदार हमारे साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, ओम शांति। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे भाई बहन बंधु बैठे हुए हैं, इस संसार के भ्रांति को मिटाने के लिए, इस संसार के भ्रांति को मिटाने के लिए ओम शांति में भी क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए जोर से बोले ओम शांति, ओम शांति। जब ओम शांति का उच्चारण होता है तो जो अराजक तत्व, जो निगेटिव ऊर्जा होती है, वो दूर दूर नहीं टिकती है। इसलिए सभी लोग जब ओम शांति की बात आए तो बड़े उच्च स्वर में, जैसे शंखनाद किया जाता है, ऐसे शंखनाद जैसे स्वर में ओम शांति का उच्चारण किया करें, जय श्री राम का उच्चारण किया करें। दीदी जी का दादी जी का जीवन चरित्र नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा। देखिए संसार में सब पर विजय पाना ठीक है, आप संत बन जाएंगे, आप घर का त्याग कर देंगे, आप परिवार का त्याग कर देंगे, लेकिन मोह का त्याग कर पाना बड़ा ही कठिन है। मोह का त्याग होता नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने जो सुना, मैंने जो समझा, वो दादी जी के जीवन में मोह का लेश मात्र, किंचित मात्र कहीं पर कुछ दिखा नहीं। क्योंकि अगर मोह होता तो मुझे लगता है कि इतने लोग एक साथ एक छत के नीचे एक वेशभूषा में वास्तव में था। ये आज भारत विश्व गुरु बनने के करीब में है, विश्व गुरु बनने के करीब में है, लेकिन वास्तव में कोई न कोई अराजक तत्व, अराजक शक्ति वेशभूषा के आधार पर बंटवारा कर रहा है, बोली भाषा के आधार पर बंटवारा कर रहा है, चंदन और टीका के आधार पर बंटवारा कर रहा है। ऐसे अराजक तत्व को, ऐसे अराजक शक्ति को पछाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो पूज्या दादी जी ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से, मुझे वो पल याद आ रहा है जब स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो की यात्रा किए, तो सर्वप्रथम जब मंच पर पहुँचे तो सबसे पहला उद्बोधन उनका यही था, भाइयों और बहनों, इतना ही बोले स्वामी विवेकानंद जी। महाराज 5 मिनट तक तालियों की गूंज गड़गड़ाहट गूंजती रही, वहाँ पर भी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मोह किसी के भी जीवन में आ सकता है, लेकिन हमारी दादी जी के जीवन में मोह लेश मात्र नहीं था। और वास्तव में बता दूं, मोह का त्याग पाना बहुत ही कठिन होता है। साधु बन जाइए, महात्मा बन जाइए, लाल पीला सफेद वस्त्र पहन लीजिए, लेकिन मोह का त्याग पाना बड़ा ही दुर्गम और जटिल काम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजय बहु सूला। अगर आपके जीवन में मोह है तो समझ लेना इस महासागर, इस संसार सागर से आप पार नहीं जा सकते, आप ब्रह्म से, ब्रह्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकते, आप बिंदु के सिंधु में समा नहीं सकते जब तक आपके अंदर किंचित मात्र मोह है। क्योंकि मोह अनेकों व्याधियों को जन्म देता है। काम बात कब लोभ है अपारा, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हुए हैं, आप जानते होंगे, मानस पुत्र थे, उनको भी एक बार मोह हो गया। कथा आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं कथा को। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी थे, उनको भी एक बार मोह हो गया था, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन मोह तो था, लेकिन उनके जीवन में समर्पण था, जो समर्पण आज ब्रह्मा कुमारी में दिख रहा है। क्या समर्पण था नारद जी के जीवन में? नारद जी के जीवन में केवल एक समर्पण था कि जहि वेद हो ही नाथ हित मोरा, जहि वेद हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी। अपने इष्ट के प्रति समर्पण था। नारद जी ने कहा कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा उद्धार हो सके, जिस प्रकार से मेरा हित हो सके, वही कार्य करिए। मुझे लगता है कि आज ब्रह्मा कुमारी में वह समर्पण, वह शांति, वो ऊर्जा दिख रही है। एक ही वेशभूषा में, एक ही बोली भाषा में, एक ही चंदन टीका में, एक छत के नीचे बैठ करके जो शिक्षा, जो विचारधारा ग्रहण करके पूरे विश्व में फैला रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना श्रद्धा सुमन ज्ञापित करना चाहता हूँ। अभी गीत गाया जा रहा था, मैं एक मिनट का और समय लूंगा। वैसे तो हमारे आचार्य यहाँ पर विराजमान हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे तो मुझे समथिंग 8 या 10 मिनट का समय मिला था, फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से सत्संग किया जाएगा। सत्य का संग, सत्संग का मतलब सत्य का संग है। आज जिस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, दादी जी की 16वीं पुण्यतिथि है और वैदिक परंपरा में 16 अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो चाहे 16 अंक हो और चाहे 16 स्तंभ हो, यह सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या से जगत गुरु संत भगवंत महामंडलेश्वर 16वें पुण्यतिथि पर आए हैं, यह भी एक सौभाग्य का विषय है। दादी जी को गीत के माध्यम से बताया गया कि आप पारस मणि हैं और प्रकाश मणि हैं। गुरु का काम क्या होता है? गुकारत्व अंधका से आता रुकारातन निरोध कहा, जो अंधकार से खींच करके प्रकाश के तरफ आपको मोड़ दे, आपका जीवन बदल दे, वो गुरु है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग विराजमान हैं, सब कहीं ना कहीं उनकी इष्टा दादी जी हैं। दादी जी का विचारधारा, आज दादी जी के 16वें पुण्यतिथि पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनकी विचारधारा को जन जन तक आप अगर पहुँचाएंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही सच्चा श्रद्धा और सुमन होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सत सुधरही सत संगत पाई और पारस परस कुघात सुहाई। सत अगर सुधरता है तो सतसंगत पा करके सुधरता है। मुझे लगता है कि पूज्य दादी जी को जो पारस मणि की उपाधि दी गई है वो 100% सार्थक है। क्यों? क्योंकि पारस एक ऐसी मणि होती है जिसका संग किसी को हो जाए तो अपने जैसा वो बना लेती है। और मुझे लगता है इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान को पूज्य दीदी जी पारस मणि के रूप में थी, जिनका स्पर्श, जिनका वाक्य, जिनका समय इस संस्थान के लिए बीता हो, तो मुझे लगता है कि यह पूरा संसार, ये पूरा संस्थान ही पारस मणि के सरीखे हो गया है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो यहाँ से एकता का, एकजुटता का और अखंडता का जो संदेश जा रहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना आज यह संस्थान कर रहा है, इसलिए पूरे भारत के हिंदू संत, संत सनातन, संत परंपरा आज इसका आभारी है। आज अनेक प्रकार के अराजक तत्व सनातन धर्म में घुस गए हैं, अपनी पैठ बना लिए हैं। जैसे आपने सुना होगा नशा मुक्ति भारत अभियान, अगर सनातन धर्म को, अगर भारत को विश्व गुरु बनाने से रोकना है तो भारत की शिक्षा को, भारत के संस्कार को, भारत के धार्मिक संस्थान जैसे ब्रह्मा कुमारीज को, भारत के संत को, भारत के ग्रंथों को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो हमारा भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। और भारत को विश्व गुरु बनाने का सर्वप्रथम जो वीणा उठाया है अगर किसी ने, तो ब्रह्मा कुमारीज का संस्थान उठाया है, यह देखकर आज प्रसन्नता होती है। मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा, बातें तो आपसे करने के लिए बहुत कुछ हैं, पूरी बात अपनी भी नहीं कह पाया हूँ, लेकिन फिर कभी अवसर मिलेगा तो अपनी बात आपको रखूंगा। एक बार पुनः
क्रांति के साथ ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। दम नहीं पकड़ रहा है, इतना तेज तो हम अकेले बोल रहे हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए पूर्ण संक्रांति के साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। धन्यवाद।
बहुत सुंदर आशुतोष जी महाराज ने शांति में क्रांति ला दी, और आप चूंकि निर्मोही घाट से पधारे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि गीता का वो उपदेश हे अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जहां कहा गया है हे अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष यास्यामि मा शुचि। आदरणीय दादी जी ने न केवल अपने लिए वो पाठ पढ़ा, वरन संपूर्ण समाज के लिए पढ़ा। हमारे संत शिरोमणि को ये बता देना चाहूंगी कि ये जो सामने बैठे हैं, भले ही श्वेत वस्त्रों में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन सारे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, सात्विक अन्न ग्रहण करने वाले लोग हैं। ये 12,000 परिवार की रूपरेखा भी संभाल रहे हैं और योग और आध्यात्म भी संभाल रहे हैं। बहुत आनंद हुआ, और मैं पुनः आवाहन करना चाहूंगी, महामंडलेश्वर श्री श्री 108 निर्मोही घाट अयोध्या से हमारे बीच महंत गिरीश दास जी महाराज पधारे हैं। 7 वर्ष की आयु से आप आ गए थे और आपने जब संन्यास ग्रहण किया 2010 में, तो निरंतर मानव की सेवा में गतिशील रहे। आपने जो मशाल जलाई है पूरी अयोध्या को प्रकाशित कर रही है। मैं महंत गिरीश दास जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर पधारें और अपने मुखारविंद से श्रद्धांजलि दें।
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुं सूमुं च प्रणवामि पुनः पुनः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। जय जय हनुमत वीर, जय जय हनुमत वीर। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस पावन नगरी जो सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी मस्तक, भगवान की उन दुर्लभ पुरियों में अयोध्या मस्तक के रूप में विराजमान है, ऐसी अयोध्या से पूज्य रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी के नेतृत्व में एक सुंदर संयोग बना हमारे इस आध्यात्मिक जगत में। भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, भगवान के भी संपूर्ण अवतारों का कोई न कोई निमित्त बना। पूज्य जगत गुरु जी महाराज के सानिध्य में आपके ब्रह्मा कुमारी के अयोध्या के प्रभारी माननीय मुकेश जी और चंद्रेश जी इस सुंदर सुगमता के, इस सुगम दुर्लभ अवसर के माध्यम बने, और उन्होंने श्रीधाम अवध को और ब्रह्मा कुमारी को जोड़ने का जो है पुल बनाने का कार्य किया, उनके माध्यम से आज यह अयोध्या आपके बीच में पधारी। अद्भुत संयोग, किसी भी संयोग के पीछे भगवान की अति कृपा जुड़ी होती है, परमात्मा की अति कृपा जुड़ी होती है। कहते हैं ऐश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। ऐसे जीवन में तमाम अवसर आते हैं जब मनुष्य तैयार होता है कि मैं तीर्थ जाऊंगा, मैं अयोध्या जाऊंगा, मैं काशी जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, और जब तक ठाकुर जी की परमात्मा की कृपा नहीं होती वह यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। तो आज ऐसे महान योगिनी राजयोगिनी दादी श्री प्रकाश मणि जी की 16वीं स्मृति पुण्य स्मृति में हम लोग अयोध्या से पधारे हैं। मंच पर अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर रहे संत समाज पूज्य जगतगुरु जी महाराज, अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ श्री हनुमान जी महाराज के हनुमानगढ़ी से पधारे हुए पूज्य श्री बाबा बलराम दास जी महाराज, अभी जिनका सुंदर वक्तव्य सुंदर उद्बोधन मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे पूज्य महामंडलेश्वर श्री आशुतोष दास जी महाराज, और इस मंच का कुशल संचालन कर रही दीदी जी, और अभी श्री मृत्युंजय भाई जी का उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ। बात भारत के विशेषता और भारत के रामराज्य के स्थापना की चर्चा चल रही थी। धाम श्री अवध से पधारने के बाद आपके बीच में कदम रखते हुए एक विशेष शांति, एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हृदय में स्थापित हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति यहाँ पर विराजमान है जो हम सभी को आकर्षित कर रही है। जिस प्रकार विज्ञान में चुंबक का आकर्षण होता है, उस प्रकार जैसे ब्रह्मा कुमारी में उतरते ही दिव्य आकर्षण की अनुभूति होती है। यहाँ के लोगों से मिलकर, उनसे जानकर, उनसे समझकर, और पूरे इस परिसर का भ्रमण करके उनके विचारों के माध्यम से, उनके वाणी के, उनके आचार व्यवहार के माध्यम से जिस प्रकार की अनुभूति हुई, जिस प्रकार की अनुभूति की रामराज्य के लिए परिकल्पना की जाती है, ऐसे राम जो आज 14 लोकों में विदित हैं और 14 लोकों में राम के उस अद्भुत छवि का दर्शन करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। कौन अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान धर्मगस्य कृतज्ञस्य सत्यवात चढ़ दृढ़व्रतो। ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे सुशासन, ऐसे लोगों को प्रेम करना, और एक जो पूरे विश्व में जोड़ने का काम ब्रह्मा कुमारी कर रही है, कभी न कभी हमारे श्री राम जी ने ही इसका मार्गदर्शन किया था। इंद्र को भी जब आवश्यकता पड़ती थी कौशलपुर राजधानी से, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज उनके सहयोग के लिए जाया करते थे, ऐसे सामर्थ्यवान राज्य के राजकुमार जब जंगलों में चल रहे थे तो उन्हें किसी राजा का आवाहन नहीं किया। एक पीड़ित, शोषित, वंचित, भटके हुए लोगों को लेकर के एक बड़ी फौज खड़ी किया। आज इस देश में जो भटके हुए लोग हैं, तमाम प्रकल्प आपके इस ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, नशा उत्पीड़न, स्वास्थ्य सेवा, सुंदर व्यवहार, आचरण, शिक्षा, ये उसी प्रकार की कड़ी को प्रदर्शित करता है। अभी पूज्य दीदी जी ने भगवान के और अर्जुन के संवाद को सुनाया। यह सनातन धर्म है, इसमें जगह जगह पर परिभाषाएं बदलती रहती हैं। सनातन धर्म में कभी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गतः, कभी भगवान कहते हैं कि अहिंसा करना पाप है, और कभी भगवान उस महाभारत के युद्ध में खड़े हुए जब कौरव और पांडव आपस में युद्ध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं अपने बंधु पर ही कैसे शस्त्र उठाऊं। भगवान ने कहा जब युद्ध धर्म परायण हो तो वहां शस्त्र किसी पर भी उठाना आवश्यक है, और युद्ध जब अधर्म परायण हो तो वहां हिंसा की आवश्यकता है। आज इस देश में जो आतताई इस देश की सभ्यता को, इस देश की व्यवस्था को तमाम रूपों से, शिक्षा पद्धति से, वैचारिक पद्धति से, इस इंटरनेट की पद्धति से जो हमारे युवाओं को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज उन सभी को मोड़कर सनातन की तरफ लाने का यह अद्भुत कार्य हम लोगों को जो ऐसा महसूस हुआ पूज्य दादी जी ने किया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आप सभी अपने उन भटके हुए भाइयों को, चाहे वह नशा का माध्यम हो, चाहे वह धर्मांतरण का माध्यम हो, चाहे वह मांसभक्षी लोगों के बढ़ने के माध्यम हो, सभी को उनकी सही दिशा दिखाने का कार्य यह ब्रह्मा कुमारी कर रहा है। इसको देखकर हम सभी का मन अति उत्साह से गर्वित हो गया। इसी प्रकार का संयंत्र, इसी प्रकार की व्यवस्था यदि निरंतर चलती रही तो वह दिन दूर नहीं कि विश्व में फिर विश्व भारत गुरु के रूप में स्थापित होगा और पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित होगा। और ऐसी ही संस्थाओं की पूरे देश में जरूरत है। पूज्य महाराज श्री हमारे आचार्य यहाँ विराजमान हैं, हम सभी लोग उनको प्रणाम करते हुए और आप सभी भाई बहनों को अयोध्या की तरफ से साधुवाद देते हुए और पूज्य दादी जी के चरणों में भावांजलि समर्पित करते हुए श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार यह संस्था बढ़ती रहे। इसी के साथ वाणी को विराम, जय श्री राम, ओम शांति।
हमारे बीच अभी माननीय संत गिरीशदास जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। समय और काल के अनुसार सनातन धर्म ने शास्त्र उठाए हैं तो शस्त्र भी उठाए हैं। कोई दो राय नहीं इसमें कि हमारे संतों ने इस देश को सदैव आगे ले जाने में अग्रगण्य भूमिका निभाई है। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं उनसे जिन्होंने जगमगाने की परंपरा का व्रत लिया है, ब्रह्मा कुमारी बहन सुमन जी से। बाल्यकाल से ही वो इस आध्यात्मिक ज्ञान में हैं और हमारे एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। 30 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। एजुकेशन केवल इन्फॉर्मेशन का माध्यम बनकर रह गई, उसे उस स्तर तक ले जाना जहाँ कहा जाता था विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। विद्या को कैसे हम ग्रहण करें जो हमारे जीवन का उद्धार करे। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के बारे में आप बताने आ रही हैं बहन सुमन जी।
ओम शांति। मंचासीन संत महंत जो इस धरा को पवित्रता के वाइब्रेशन से थमा के रखा है, बहुत सुंदर आज के प्रवचन हम सभी ने सुना। साथ साथ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, मनोरमा बेन जी और सभा में उपस्थित सभी बाबा के होली हंस भाई और बहने, आज बहुत ही पावन उपलक्ष पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के दिव्य स्मृति के दिवस पर। आज एक बहुत सुंदर कैंपेन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी मास में माननीय राष्ट्रपति जी भारत के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पधारे थे और ये राइज कैंपेन का उद्घाटन आपके कर कमलों के द्वारा इस हॉल में हुआ था। और उस कैंपेन के अंडर हम बहुत सुंदर एक एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाबा और दादियां शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे, बहुत ज्यादा उनके संकल्प चलते थे, और वो भी आध्यात्मिक शिक्षा। इस लक्ष्य को लेकर के ब्रह्मा बाबा कराची में एक बहुत सुंदर हॉस्टल का निर्माण किया और दादियों ने वहां शिक्षा ग्रहण की। दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी ग्रहण किया। तो यहाँ अब इस कैंपेन के दौरान हम आध्यात्मिक ज्ञान हर स्कूल और कॉलेज में देने के लिए इसका शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये कैंपेन पूरा एक साल का है, ये यात्रा का रूप नहीं ले रहा है। अपने सब जोन और सेंटर्स वाले, शहर वाले अपने सुविधा अनुसार इस कैंपेन को आप कर सकते हैं आपके शहरों में। इसके दौरान बहुत सुंदर हम कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। हर कॉलेज और स्कूल में जाकर के टॉक्स तो देंगे ही, वैल्यूज के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, इसके बारे में तो हम भाषण तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये भी हमें पता है कि एक घंटे के भाषण से किसी का परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए लगातार उन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और स्कूल के साथ एक ऐसा अनोखा रिश्ता बना करके लगातार हम कार्यक्रम उन जगहों पर करें। इसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स हमने डिजाइन किया है। स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कैसे हम राज्यों का कोर्स करा सकते हैं, एक बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ है, वो भी हम दे सकते हैं। आजकल के बच्चों को काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत कुछ आ रहे हैं बच्चों में, इसलिए काउंसलिंग सेशंस भी हम दे सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप किए हुए हैं, वो भी दे सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन कोर्सेस अलग अलग प्रकार से वो भी डिजाइन किया हुआ है। और कॉलेज और स्कूल्स में थॉट लैब, बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, वो भी हम अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में थॉट लैब के रूप में स्थापित करते हुए स्टूडेंट्स को मदद हम प्रदान कर सकते हैं। वैसे लोग समझते हैं वैल्यूज या मूल्य बहुत बोरिंग है, इसीलिए वैल्यू गेम्स हम बहुत ही रमणीकता से हम कैसे वैल्यूज को सिखाएं बच्चों को, वो भी अलग अलग प्रकार से गेम्स का निर्माण भी हमने किया हुआ है। और बहुत सुंदर एक और प्रोग्राम है, एम्बेसडर्स फॉर गुडनेस का एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी होगा। बच्चों को तो फिर वो प्राइजेस तो अलग अलग प्रकार से मिलते ही है स्पोर्ट्स में या फिर एजुकेशन में, लेकिन ये फेलिसिटेशन या फिर एम्बेसडर ऑफ गुडनेस उन बच्चों को दिया जाएगा जो अपने व्यवहार में बहुत वैल्यूज दिखाई दे रहा है या फिर अपने बड़ों का सम्मान रखते हैं, सच बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए ये सम्मान हम दे सकते हैं। साथ साथ पावर टॉक्स का भी हम आयोजन कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोग्राम इस रीति से हम कर रहे हैं कि कॉलेज और स्कूल्स में भी जाकर के हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर वो कॉलेज और स्कूल में नहीं जा सकते, उनको फिर अपने सेंटर में बुला करके वहाँ कॉन्फ्रेंसेस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज आप अपने सेंटर में करा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन पावर टॉक्स का भी हम आयोजन कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो हर प्रकार से ये सुविधा दिया जा रहा है। अगर आप अपने सेंटर या सब जोन में ये कार्यक्रम करना चाहेंगे तो जरूर आप एजुकेशन विंग को संपर्क करेंगे। यहाँ आनंद भवन के थर्ड फ्लोर पर एजुकेशन विंग का ऑफिस है, वहाँ फोल्डर्स और जानकारी अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ हर कॉलेज और स्कूल में जब जाएंगे प्रतिज्ञा जरूर कराएंगे। जैसे बाबा कहते हैं दृढ़ता में बड़ा बल है, अगर प्रतिज्ञा कराते हैं हर व्यक्ति के अंदर वो दृढ़ता आएगा, तो उसका एक झलक अभी हम आप सभी के साथ करना चाहेंगे। आप सभी पवित्र आत्माएं सात्विक जीवन शैली अपना के चल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ बैठ करके ये संकल्प हम करते हैं दृढ़ता से, ना केवल अपने जीवन में, अपने परिवार वालों को, अपने शहर को, लेकिन पूरे समाज और देश और विश्व को परिवर्तन करने के लिए बहुत मददगार मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि थोड़ा खड़े हो सकते हैं प्लीज। जो मैं बोलती जाऊंगी वो रिपीट करेंगे हाथ ऐसे रखते हुए। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि स्वयं को नशीली पदार्थों से मुक्त रखूंगी और दूसरों को भी इससे मुक्त रखने के लिए प्रेरणा करूंगी। मैं सोशल मीडिया का उपयोग केवल अपने सकारात्मक विकास के लिए करूंगी। तीसरा पॉइंट है, मैं इस विश्व के प्रत्येक मनुष्य और प्राणी का सम्मान करूंगी। मैं अपने आसपास के वातावरण और पांच तत्वों को स्वच्छ बनाने के लिए तत्पर रहूंगी। मैं स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट राज्ययोग का अभ्यास करूंगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। वो पोस्टर्स दे दीजिए। हाँ, पोस्टर्स सभी को दे दें। अभी ये अभियान हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं। आदरणीय महात्मा गण से निवेदन है कि ये पकड़ करके इस राइज कैंपेन का उद्घाटन करेंगे। राइज का अर्थ है राइजिंग इंडिया टू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा हम स्वर्णिम भारत का उदय कैसे करें, इसके बारे में तो सामने। अभी मुकेश भाई और ममता बहन आए। पट्टा दे रहे हैं।
भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से प्रत्येक प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल हमारे सामने है। ध्वज लेकर सामने आता हुआ पंजाब और पंजाब के पीछे हम देख रहे हैं कर्नाटक वाले उमंग और उत्साह के साथ तैयार हैं। ये अलग जगाएंगे अपने प्रदेश में जाकर। कर्नाटक के पीछे है उत्तर प्रदेश। जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे। चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद पीछे पश्चिम बंगाल है। और ये सब रूहानी सेनानी मंच पर पीछे आकर अपना स्थान ले लिए हैं। माउंट आबू से निकलकर अलग अलग प्रदेशों में ये सब जाएंगे। आपकी करतल ध्वनि इनके उमंग और उत्साह को बढ़ाएगी। परमात्मा की भी स्वीकृति मिल गई है। 3 मिनट योग करेंगे और भर
जाएंगे।
जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है, तो वहीं ड्रग और डिजिटल एडिक्शन उनके जीवन को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस युग में विद्यार्थियों में बढ़ती आत्मघात की प्रवृत्ति पर हम सभी को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज शिक्षा जगत में उत्पन्न हो रही इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान राइज, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। इस अभियान का शुभारंभ स्वयं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांति वन में पधार कर किया। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत वर्ष के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को राजयोग, मेडिटेशन एवं मूल्य शिक्षा द्वारा सशक्त करना है। वर्ष 2023-24 में चलने वाले इस अभियान में ब्रह्मा कुमारीज के 5,000 से अधिक सेवा केंद्र राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए 1,00,000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। राजयोग मेडिटेशन कोर्स, वैल्यू एजुकेशन कोर्स, काउंसलिंग सेशंस, थॉट लैब, पावर टॉक्स, वैल्यू गेम्स आदि के माध्यम से विद्यार्थियों में चेतना का विकास करना, इसके साथ साथ अच्छे आचरण और नैतिकता के प्रदर्शन के आधार पर एम्बेसडर ऑफ गुडनेस के रूप में विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 25 अगस्त 2023 को ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में इस शिक्षा अभियान का विधिवत राष्ट्रीय शुभारंभ किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज का विश्वास है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। लाखों लोगों के परिवर्तन की यात्रा डोमिनोज इफेक्ट की तरह एक नए विश्व का सृजन करेगी। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.educationwings.com/rise, ईमेल info@educationwing.com, मोबाइल 9413-84864।
ओम शांति। अभी आप ये छोटा सा वीडियो देख रहे थे। मैं आपको फिर मंच की ओर ले चल रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनकी कथा का प्रवचन, सुमिरण, वर्णन थोड़ा नहीं, वैसे तो अखंड रामायण जब घरों में होती है तो 24 घंटे चलती है, लेकिन हमारे ये संत प्रवर एक एक चौपाई पर एक एक मास बोल सकते हैं, और अद्भुत है अपने आप में इनका ज्ञान हमारे बीच। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज बैठे हैं, और ये कथा मर्यादा पुरुषोत्तम की केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि देश और विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस कथा के प्रवक्ता रहे, भागवत के प्रवक्ता रहे। आपको 2007 में इस रहनुमाई के लिए जगत गुरु की उपाधि मिली। मैं श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर पधारें, माइक वहीं दे दिया जाए, और वहां से वो अपनी बात दादी जी के प्रति भी और शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे इस अभियान के प्रति भी।
रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधिषे रघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। ओम शांति। इस दिव्यतम भारतीय अभ्युद्यान के लिए ओतप्रोत आबू के इस ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रांगण में हम सब विराजमान हैं। परम पूज्या राजयोगिनी दीदी प्रकाशमणि जी के 16वीं पूर्ण स्मृति दिवस पर, जिसका थीम है विश्व बंधुत्व, और हमारा विषय है शिवद्रोही ममदास कहावा। और सुबह से लेकर अभी तक का हमारा अनुभव इन तीन तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। मेरी पहली अनुभूति आज के लगभग 7 वर्ष पूर्व में इस संस्था में आया था और तब भी इस मंच का संचालन हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा बहन ने किया था और इनके संचालन से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से त्याग, पवित्रता और समर्पण, यदि हम कहें कि त्याग, पवित्रता और समर्पण की त्रिवेणी यहां ब्रह्मा कुमारीज में बह रही है तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंच पर विराजमान हमारे साथ अयोध्या से पधारे हुए पूज्य महंत श्री बलराम दास जी महाराज, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या, डांडिया मंदिर के पूज्य महंत श्री गिरीश दास जी महाराज, महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी महाराज और हमारे मृत्युंजय भाई, मंच का संचालन कर रही बहन मनोरमा जी, आप सब यहां पधारे हुए भाई बहन, हम जिनकी आज स्मृति दिवस पर यहां विराजमान हैं, उनकी सेवा, उनकी साधना का ही ये प्रारूप है कि आज इतने लोग एक साथ एक स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पारस मणि का अर्थ आप जानते हैं, पारस वो मणि है जिसमें कैसा भी कुदहातु, चाहे वो मैला हो, कुचैला हो, गंदा हो, उसमें कुछ दोष हो, पर जैसे ही उसको पारस मणि के साथ स्पर्श कराते हैं वो स्वर्ण बन जाता है। यहां पर बैठे हुए इतने लोग जिन्होंने पवित्रता पूर्वक जीवन निर्वाह करने का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो संकल्प दीदी के आश्रय में लिया है। दादी का आश्रय ही ऐसा है कि आज यहां पर इतने सारे पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं जो अध्यात्म के उस शिखर पर जाकर बिखर चुके हैं, जिसकी सुगंध भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में आज प्रसारित हो रही है। किसी भी महापुरुष या राजयोगिनी दीदी जी को याद करने की किसी भी स्मृति के लिए तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है चंदन व्रत, दूसरा है केतकी व्रत, तीसरा है इच्छुदंड व्रत और चौथा है स्वर्ण व्रत। किसी भी महापुरुष के या किसी भी दादी के, किसी भी राजयोगिनी के जीवन को निर्धारण करने के लिए इन चार बातों को ध्यान देना होता है। सबसे पहला व्रत है जिसका नाम है स्वर्ण व्रत। स्वर्ण का अर्थ सोना होता है। जब हम किसी के हाथ में किसी का श्रृंगार स्वर्ण के रूप में देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन वो स्वर्ण किसी का श्रृंगार कब बनता है? जब वो आग में तपाया जाता है। 45-45 वर्ष की साधना दीदी जी ने यहां पर अपने आप को स्वर्ण की भांति तपाया है। जब इतने संसाधन नहीं थे, जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जब इतने प्रकल्प नहीं थे, तब ब्रह्मा बाबा ने अवचनन किया कि नहीं नहीं, अगर इनको तपाया गया, इन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर अपने आप को इस संस्थान के पीछे लगाया तो आज स्वर्ण की तरह आप लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे विश्व में चमक रहे हैं। स्वर्ण की प्रभा तो हर व्यक्ति देखता है, स्वर्ण का प्रकाश तो हर व्यक्ति देखता है, पर स्वर्ण कितना जला है, कितना तपा है, कितना उसे पीटा गया है, कभी देखना उसको, तब जाकर के वो दूसरे किसी भी युवती के, किसी भी स्त्री के गले का वो श्रृंगार, कान का वो श्रृंगार बनता है। दूसरा व्रत है इच्छुदंड व्रत। इच्छुदंड का अर्थ होता है गन्ना। गन्ने को आप देखो कोल्हू में पेरा जाता है, चाहे खड़ा पेरो, चाहे पड़ा पेरो, चाहे उल्टा चाहे सीधा, उसके साथ इतनी उसकी दुर्दशा होती है, लेकिन मनुष्य को अपनी मिठास प्रदान करता है, अपनी मिठास प्रदान करता है वो, उसको किसी भी प्रकार से कष्ट दिया जाए, कोई भी महापुरुष, कोई भी साधिका, कोई भी सेविका अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए वो समाज के थपेड़ों को सहती है, पर फिर भी वो अपनी मुस्कान के द्वारा, अपनी खुशबू के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा, अपनी मीठी बोली की तरह, गन्ने के जूस की तरह संपूर्ण समाज को एक रस प्रदान करने का कार्य करती है। वो रस आज यहाँ विभक्त हो रहा है, वो रस आज यहाँ प्रसारित हो रहा है, और ये रस केवल यहाँ ही प्रसारित नहीं है, संपूर्ण विश्व में प्रसारित है। भारत विश्व गुरु है, भारत राम राज्य की परिकल्पना करता है, भारत हिंदुत्व की बात करता है। आपको पता है कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जाकर सुनक ने मुरारी बापू के मंच पर कहा कि मैं आपके मंच पर इसलिए आया हूं क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। अब हिंदू का अर्थ समझना जरा ध्यान से, हिंदू का अर्थ क्या है? एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म नहीं। हिंदू का इतना छोटा अर्थ हो ही नहीं सकता। हिंदू का अर्थ है आदर्श जीवन जीने वाला। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। किसको क्या कष्ट होना चाहिए यहाँ पर? अगर आदर्श संहिता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं, तो क्या ये एक जाति, एक मजहब, एक पंथ का हो सकता? अगर होता तो हम कभी नहीं कहते वसुधैव कुटुंबकम। इतनी बड़ी सोच किसकी हो सकती है? पूरे विश्व को परिवार में, आज यूनाइटेड नेशन जिसकी बात करता है कि संपूर्ण विश्व को एक किया जाए, हमारी मनीषियों ने, संतों ने, अध्यात्म ने उसको कितने वर्षों पहले कहा, वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने कहा विश्व का कल्याण हो, उन्होंने कहा सर्वे संत निरामया। हम केवल भारत ही नहीं, हम छोटे से भारत से संतुष्ट नहीं है, हम तो उस जीवन पद्धति, हिंदू जीवन शैली, समर्पण, त्याग, सौहार्द, विश्व बंधुत्व को भारत ही नहीं अपितु तो संपूर्ण विश्व में देखना चाहते हैं, और यही विचारधारा हमको विश्व गुरु बनाने का कार्य करती है, यही विचारधारा हमें विश्व गुरु बनाने का कार्य करती है। तीसरी बात, कज्जल व्रत, काजल आंखों में लगाते हैं, माताओं की आंखों का श्रृंगार बनता है, कुछ पुरुष भी लगा लेते हैं, श्रृंगार बनता है, पर काजल बनाने की प्रक्रिया देखी है आपने? काजल बनाने की प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है, काजल बनाने की प्रक्रिया रात भर एक दीपक के ऊपर रखा हुआ वो काला जिसमें इकट्ठा होता है वो रात भर जलता है, और रात भर जलने के बाद प्रातः काल वो किसी स्त्री के नेत्रों का श्रृंगार बनता है, श्रृंगार हर कोई देखता है, पर वो रात भर जला उसकी नींव कोई नहीं देखता है। आज हम इतना विशाल पांडाल देख रहे हैं, मंच देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इनका समर्पण, इनका त्याग, इनकी भाषा, इनका आचरण, इनकी पवित्रता, इनकी शुद्धता, इनकी दिनचर्या, इसके पीछे दादी का हाथ है जो रात दिन जल कर, रात दिन तप कर इस संस्थान को, इस ऊंचाई को प्रदान किया है। इसके पीछे हाथ है उनका, उन देवियों का, उन महापुरुषों का। और शिवद्रोही ममदास कहावा, ये सब्जेक्ट दीदी ने ही दिया होगा, हम जानते हैं। भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे के पूरक हैं। शिव का अर्थ क्या है? जो शुभम कल्याणम करोतीत इत शिव, जिसके पास जाने से हमारे जीवन में शुभता प्रारंभ हो जाए, जिसके पास जाने से हमारे जीवन में दिव्य गुणों की अनुभूति होने लगे, जिसके पास जाने से हमारे जीवन में मंगल आचरण होने लग जाए, उसका नाम शिव है। और राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगी नाम हृदय, जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसका नाम राम है। क्या जो योगियों को रमण कराता है उसका नाम राम है? भगवान श्री राम महादेव की उपासना कर रहे थे, रामेश्वरम में बैठकर भगवान श्री राम उपासना कर रहे थे, कमल चढ़ा रहे थे, कमलार्चन कर रहे थे, कह रहे थे कि एक कमल कम पड़ गया तो भगवान श्री राम ने बाण उठाया और कहा कि मैं अपने नेत्रों को ही एक कमल की जगह पर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लोग राजीव नयन कहते हैं, राजीव नयन कहते हैं, और राजीव का अर्थ कमल होता है। कमल कैसा? राजीव जब हम कहेंगे तब वो श्वेत कमल नहीं, जब राजीव कहेंगे तब वो रक्त कमल होगा। मैं अपना नेत्र चढ़ाकर अर्चना करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, आप मेरे स्वामी हैं। राम जी ने कहा आप मेरे स्वामी हैं, एक दूसरे का ऐसा संबंध है। और एक बात और आपको बताऊं, ये हमारी जो व्यवस्था है ये हरिहरात्मक है। हर भी महत्वपूर्ण है, हरि भी महत्वपूर्ण है, दोनों में कोई, हाँ संप्रदायगत थोड़ी सी, जब लोग ज्यादा बुद्धिमान एक साथ बैठते हैं तो वहां समस्या होती है। मूर्ख लोग एक साथ बैठते हैं तो समस्या नहीं होती है, पर विद्वान लोग एक साथ बैठते हैं तो समस्या होती है। क्यों? कारण क्या है इसका? 10 विद्वान एक साथ नहीं बैठ सकता है, 10 संप्रदाय का आदमी एक साथ नहीं बैठ सकता है। अपने तिलक को, चंदन को, अपनी मान्यताओं को दूसरे पर थोपने के लिए झगड़ा कर लेगा। पर गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले एक साथ बैठ जाते हैं, उनका आपस में कोई द्वंद नहीं होता। विचार किया कभी क्यों? क्यों? जो पढ़ा लिखा है, जिसने समाज को देखा है, जिसने वेद वेदांत का अध्ययन किया है, जो गुरु और संतों की परंपरा में रह करके जीवन शैली और दिनचर्या को अपनाया है, वो संगठन बहुत दिन तक नहीं चलता है, उसमें फूट पड़ जाती है। क्यों? वो अध्यक्ष कैसे बनेंगे? हम उनसे कमजोर थोड़ी हैं। 20 लोग उनके साथ, 20 लोग उनके साथ, और वो सभ्यता, वो समाज, वो संगठन टूट जाता है। पर बुरे लोगों का संगठन क्यों नहीं टूटता? गुटखा खाने वाला व्यक्ति सामने वाले से चूना मांगता है, वो नहीं पूछता किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो। पान खाने वाला नहीं पूछता है कि तुम्हारा हाथ साफ है कि नहीं। क्यों? मेरी समझ में एक बात आती है कि सम्मान व्यक्ति अकेले लेना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कुर्सी किसी से नीची हो, मैं चाहता हूं मेरी कुर्सी सबसे बड़ी हो, क्योंकि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। और ज्ञानी का जब अहम व्यक्ति के अंदर आता है तो सम्मान तो अकेले प्राप्त करना चाहता है, पर बुराई व्यक्ति समूह में प्राप्त करना चाहता है कि हम ही थोड़ी बीड़ी पीते हैं, दुनिया पीती है। इससे बाहर निकलना होगा, लोगों से प्रेम करना होगा। आपकी वाणी, आपकी मुस्कुराहट, जो कमल शिखर पर जाकर बिखर जाए, जिसका जिसकी सौरभ्यता, जिसकी सुगंधि पूरी दुनिया में फैल रही है। और यहाँ आकर के मैंने देखा जिनके चेहरे आप देखो एकदम निर्लेप, निर्दोष, पुष्प की तरह खिले हुए हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता तो देखो। फिर किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पंथ के हैं, किस मजहब के हैं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इनकी चेहरे की प्रसन्नता को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फूल की कोई जाति नहीं होती, वो तो जो सामने आता उसको अपना सुगंध देता। ब्रह्मा कुमारी का भी कोई जाति धर्म पंथ नहीं, ये तो खुशबू बिखेरता है। इसकी तो सौरभ्यता पूरी दुनिया आज देख रही है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी वहां ऐसा है और भगवान की आराधना करने से रोकते हैं। कुछ लोगों का फोन भी आया मेरे पास, मैं इसीलिए यहां पर आया हूं। कुछ लोगों ने फोन किया कि सनातन धर्म का विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और महाराज जी आप वहां कैसे जाते हैं? हमने कहा जब तक किसी को देखा ना जाए, जाना ना जाए, तब तक उसके ऊपर टिप्पणी ना किया जाए। मैं सबके लिए ये बात कहता हूं,
पहले जानिए, किसी भी धर्म को छोटा कह देना, पहले उस धर्म को तो पढ़ें आप, पहले उसके ग्रंथ को तो पढ़ें, विचारधारा को पढ़ें। हम स्वयं में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर बैठ जाएं, अपना नेत्र बंद कर लेने से अंधेरा नहीं छाता, अंधेरा तब छाता है जब सूर्य अस्त होता है। मैंने देखा, यहाँ पर देखो सामने विराजमान दृश्य लगा हुआ है, जहां आप जाकर के देखो सारे देवी देवताओं का दृश्य लगा है, वो मूर्ति पूजा का विरोध कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, यहां विरोध नहीं है। और एक शब्द मैं आपसे कहूं, मैंने जो देखा यहां पर सुधार से ज्यादा स्वीकार को मान्यता दी जा रही है। सुधार नहीं, बहुत हो गया सुधार। नशा मुक्ति ये जो कार्य चल रहे हैं ये सुधार के कार्य हैं, पर सुधार से ज्यादा आवश्यक है स्वीकार्य। स्वीकार करना सीखिए। तो भैया अच्छे लोगों को तो सब स्वीकार करते हैं, महान तो है जो बुरे को स्वीकार करके अच्छा बना दिया करे, स्वीकार उसे कहते हैं। और जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो पाई न के ही गति कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, कौन कौन पा गया गति? कहा दुनिया में सबसे परित्यक्ता यदि कोई है तो वो गणिका है। गणिका अजामिल गीद ब्यादि गजादि खल तारे घड़ा। राम जी ने किसी का परिष्कार नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, जो आया उसको स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा कुमारी सबको स्वीकार करता है, सबको स्वीकार करता है। और यहाँ का वाक्य देखो, मेरे मीठे बच्चों, बहन बैठी है जानती है, वेद भगवान कहते हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं ये कौन है? कहा भो अमृत पुत्रा, ये अमृत के पुत्र हैं। सुबह सुबह मैं आ रहा था, अमृत काल की बात, आपकी जो वाणी है, आपके जो विचार हैं, वो ऐसे ओतप्रोत होकर के निकलते हैं ना कि जैसे अगर गन्ने का जूस पीना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसको काटो छीलो लाओ रस निकालो उसके बाद तब उसका पान करोगे। ब्रह्मा कुमारी में उस अध्यात्म का जूस पिलाया जाता है, बिना मेहनत के आपको प्राप्त हो जा रहा है। कोई मेहनत नहीं करना, बिल्कुल बढ़िया बना ताजा ठंडा किया हुआ अध्यात्म का वो जूस है जो माताएं बहने हमारे भाई लोग बनाकर रखे हैं। आओ और उस अध्यात्म का जूस पियो और पूरी दुनिया को अध्यात्म में बना दो। उसकी परिकल्पना यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आप सब यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ से एक जीवन शैली, एक ऊर्जा, एक पवित्रता लेकर जब पूरी दुनिया में जाएंगे तो पूरी दुनिया वैसे भी भारत की ओर देख रही है। 21वीं सदी भारत के अभ्युत्थान का है, 21वीं सदी भारत के विश्व गुरु का है, और अब तो कहना ही क्या है, भारत तो धरती छोड़ो चंद्रमा पर भी चंद्रयान स्थापित कर दिया है। सूरज सबसे पहले यदि हमारे भारत से निकलता है तो चंद्रमा भी दक्षिण में अब चंद्रयान को स्थापित कर दिया। आने वाली 21वीं सदी राम राज्य की होगी, आने वाली 21वीं सदी मानवता की होगी, आने वाली 21वीं सदी धर्म की होगी, आने वाली 21वीं सदी पवित्रता की होगी, आने वाली 21वीं सदी त्याग की होगी, आने वाली 21वीं सदी समर्पण का होगा, जिसका मंगलाचरण ब्रह्मा कुमारी के इस पावन प्रांगण से प्रारंभ हो रहा है। और आप सब इसके साक्षी हैं। आज दादी के 16वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस के पावन पर्व पर यह बात मैं कहता हुआ जा रहा हूँ कि आप सब उसके साक्षी बनने वाले हैं। एक एक पुष्प अपनी सुगंधि को बिखेरेंगे, एक एक व्यक्ति अपने जीवन की नैतिकता और पवित्रता का पालन करेगा तो ये पूरी दुनिया एक दिन स्वीकार करेगी कि नहीं नहीं, भारत विश्व गुरु था नहीं, भारत विश्व गुरु है। और आचरण की परंपरा यदि कहीं से मिलेगी तो वो भारत से मिलेगी, और कहीं से नहीं मिल सकती है। तभी तो दारा सिकोह जैसे तानाशाह इस भारत में आया, उसने कहा कि वेदों का फारसी अनुवाद कराओ। क्यों? मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है कि वास्तव में है क्या इसकी बात, क्या गंभीरता है इसमें, कितनी डेप्थ है इसमें। दारा सिकोह के बाद जब अंग्रेज आया, उसने मैकाले को भेजा और मैकाले से कहा कि भारत की इतनी बड़ी गरिमा और पवित्रता, पता लगाओ कि उसकी मजबूती क्या है, पता लगाओ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैकाले आया और आकर के उसने अपनी एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया। शोध ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए उसने दो बातें लिखी, बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी उसने। उसने कहा कि भारत को तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक भारत की ऋषि परंपरा और भारत की कृषि परंपरा समाप्त नहीं हो जाती है। पर आप सब ऋषि के ही संतान हैं, आप सब ऋषि के संतान हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ऋषि परंपरा और हमारे ग्रंथ पूरी दुनिया का दिग्दर्शन है, पूरी दुनिया का आत्मबोध है, पूरी दुनिया का आत्मचिंतन है, पूरी दुनिया का आत्म केंद्र है। पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस भारत में विराजमान हैं जहाँ इतने पवित्र लोग एक साथ बैठते हैं, इनका भोजन, इनका चलना, इनका उठना, इनकी बाणी, इनका दर्शन, इनकी वेशभूषा, इनका बोलचाल यदि देखना है तो ब्रह्मा कुमारी में केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, भारत का दर्शन होता है। क्या भारत का दर्शन हो रहा है? और निश्चित रूप से इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य आप सबकी जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। जैसे परमात्मा तक जाने के मार्ग कई हो सकते हैं, पर जाना तो एक ही जगह है, जाना तो एक ही जगह है, मंजिल सबकी एक है। कोई ट्रेन से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, तो कोई पैदल जाएगा। जिसकी जैसी साधना, जैसा प्रकल्प, वो उस प्रकार से उस साधना को प्राप्त करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मुकेश जी को, धन्यवाद देता हूँ मैं चंद्रेश जी को, मृत्युंजय भैया को, और हमारी बहन जो है जो इतना सुंदर इस मंच का संचालन कर रही है, निश्चित रूप से हमारी बहन मनोरमा जी, और आप सब यहाँ पधारे लोग कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब इसी प्रकार से दिव्यता के साथ, इसी प्रकार से पवित्रता के साथ, इसी प्रकार से अपने जीवन में अध्यात्म को पिरोकर एक दिन भारत नहीं पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी छा जाए और पूरी तरह इस अध्यात्म और आनंद के परिचय से ओतप्रोत कर दे। मैं ऐसी मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। भाई साहब माइक ठीक कर दीजिए, मॉनिटर नहीं आ रहा है। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ जो हमारी दादी जी का आपके सबके प्रति भाव था। दादी का भाव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अपने बच्चों से उनका संदेश है। और दादी कह रही हैं, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। और दीदी ने क्या कहा, क्यों उदासी की तस्वीर बन के पड़े। जो यहाँ आ गया कोई उदास नहीं होगा। मैंने सवेरे सुना कि दीदी जिससे मिलती थी भोजन, रास्ते में आने में कोई समस्या, रहने का कमरा प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, ये वाक्य था उनका, सबसे पहला वाक्य ही था। क्यों उदासी की तस्वीर बन कर पड़े, गम उठाने को दुनिया में दादी जी खड़े। किसी को कोई समस्या नहीं हो सकता है। क्यों उदासी की तस्वीर बन के पड़े, गम उठाने को दुनिया में दादी जी खड़ी, मुस्कुराने मुस्कुराने के दिन है नया है भरो मुस्कुराने के दिन है नया है भरो मेरे रहते न खुद को परेशान करो खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय श्री राम जोर से जय श्री राम जय श्री राम ओम शांति ओम शांति ओम शांति
बहुत सुंदर अभी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने विभोर कर दिया होगा अपनी वाणी से और सच पूछिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी को मैं तपाए दे रहा हूँ स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी आज वो दीपक जलाए दे रहा हूँ आज वो दीपक जलाए दे रहा हूँ बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने बहुत सी व्याख्याएं की मैं उनके अगर वाणी का वर्णन करूं तो हिंदुओं के हृदय को हिंदू सा साबित कर दिया और लगता है ऐसी वाणी को सुन करके गोस्वामी जी ने भी जब कहा ना वही जाने ही जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें ही हो जाई परमात्मा जिसको जनवाना चाहता है वही जान सकता है अभी हमारे बीच महंत श्री बलराम दास जी महाराज रामायण में एक पात्र जिस तरह कोई भी कार्य करते हैं तो विघ्न विनाशक गणपति को जरूर याद करते हैं दुनिया है इस दुनिया में बहुत सारे संकट हैं और उन संकटों को दूर करने के लिए दुनिया वाले संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं हनुमानगढ़ी से हमारे बीच पधारे हैं और साथ ही साथ केवल माला और पूजा तक सीमित नहीं आपने मल्ल विद्या में भी बहुत पारंगत हासिल की हिंद केसरी जी श्री बाबा हरिशंकर दास जी के सानिध्य में और आध्यात्म को भी पिरोया आपने भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने का व्रत लिया आ रहे हैं अपनी कुछ प्रेरणाएं देने
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की अयोध्या धाम की सरजू मैया की श्री राम जन्मभूमि की मंचासीन प्रातः स्मरणीय वैष्णव कुलभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पद को सुशोभित करने वाले परम पूज्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज महामंडलेश्वर गिरीशदास जी महाराज महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी महाराज भाई गौरवदास जी मंच पर ही उपस्थित बहन मनोरमा जी जिनकी मनोहर बाणी से मनोहर संचालन से सभी का मन गदगद हुआ मेरा भी प्रसन्न हुआ आपका भी प्रसन्न हुआ होगा राजयोगी मृत्युंजय भाई जिनके कुशल नेतृत्व में बड़े मेहनत से सुबह ही आप मिले थे या कार्यक्रम चल रहा या संस्था चल रही है मैं ब्रह्मा कुमारी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानता था लेकिन राम तुलसीदास जी ने कहा है कि कहा कहो छवि आज की भले बिराजो नाथ एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में आए और भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए तो उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि क्या कहो छवि आपकी भगवान आप बड़े सुंदर है बड़ा अच्छा कि आप मेरे सामने आ गए लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लोहात तुलसीदास आपको प्रणाम तब करेंगे जब आप अपने हाथ में मुरली छोड़ के धनुष बाण ले। ऐसे अयोध्या में ब्रह्म कुमारी प्रकाशमणि दादी जी के विचारों को, संस्कारों को जो कूट कूट के भरा है, ब्रह्म कुमार भाई मुकेश भाई जी जो अयोध्या में अलग जगा रहे हैं आपके संस्था का, मैं अभिनंदन करता हूं आपका, जिनके माध्यम से मैं यहां आया हूं। मुझे जो विषय दिया गया है संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संघ की शक्ति है, ये कुछ बताने की बात नहीं। मेरे सामने जो शक्ति दिखाई पड़ रही है कलिकाल में, ये संघे शक्ति है। इतना बड़ा हाल, इतनी बड़ी संस्था, एक प्रदेश नहीं कई प्रदेश, एक देश नहीं कई देश, ये प्रकाश बड़ी दादी की प्रखरता है, विद्वता है, शालीनता है, सरलता है, जो आप सबके बीच में कूट कूट के भरे हैं, और आप एकत्र होकर के इस तरीके से ब्रह्म कुमारी संस्था का चारों दिशाओं में सुगंध फैला रहे हैं। कलिकाल में संघे शक्ति कलयुग का दूसरा भी अर्थ है, कलिकाल में कोई भी दोष, कोई भी अपराध जब हमसे होता है, जब हम अकेले में होते हैं, जब हम समूह में होते हैं, तो हमसे कोई दोष नहीं होता है। मुझे अपना सम्मान की चिंता होती है, मुझे अपने अपमान की चिंता होती है, तो हम कोई गलती नहीं करते, चाहे व्यभिचार हो, चाहे दुराचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे अनाचार हो। और इतनी बड़ी संस्था में आप लोग संघ में एकता में हैं, तो ये अपने आप भाग जाएगा, या मेरी विचारधारा है। तो इस तरीके से मैं ज्यादा नहीं जान रहा था, मुकेश भाई हमको मिले, संस्था के विषय में बात किए, जानने की इच्छा बड़ी हो रही थी। जब भी मैं निकलता था देखता था ब्रह्म कुमारी बहने निकल रही थी, तो मैं जानना चाहता था। मैंने पूछा, आपने मुझे विस्तार से बताया, जान के फिर देखने की इच्छा हुई। जानने के बाद देखने की इच्छा हुई, और फिर आज हमने आकर के मौके पर देखा, तो देखने के बाद हृदय गदगद हो गया कि जो रामचरितमानस ने कहा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, आपकी संस्था राम राज्य लाने की परिकल्पना करती है। और राम जी जब राजा हुए थे तो हर्षित भय लोग सब, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सभी लोग हर्षित हो गए। तो ये ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों में सब हर्षित ही दिखाई पड़ रहे हैं, और जब सब हर्षित दिखाई पड़ रहे तो शोक अपने आप समाप्त हो रहा। तो आज यह देख के ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि राम राज्य का वह बीज बोया जा चुका है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या वृक्ष बड़े वट वृक्ष के रूप में तैयार होगा, और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु होगा। और भारत ही नहीं अपित विश्व में हमारी बहनों का, भाइयों का डंका बजेगा। इसी के साथ जय श्री सीताराम। समय हमारा 5 मिनट था, हमने समय से पूरा किया। सभी को बहुत बहुत वंदन, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन।
बहुत सुंदर आज विश्व बंधुत्व पर सरयू की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही थी। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी हमारे संत समाज का सम्मान करेंगे, और ये हमारी भारतीय परंपरा है, शॉल पहना करके आज दादी जी की पुण्य स्मृति है। दादी बहुत प्रसन्न होते थे पहनाकर। आप सब भी तालियों से साथ दें, यह हृदय से सम्मान है। लीला में सरयू के तट पर ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज यहाँ ये सम्मान दादी जी के पुण्य स्मृति पर कुछ साहित्य दादी जी का स्मृति चिन्ह और सॉल के साथ हो रहा है। आप सबको संकल्प होगा कि ये मुकेश भाई का नाम लिया जा रहा है, ये सूत्राधार कौन है? मुकेश भाई, दो मिनट के लिए आप सबसे आकर ओम शांति करेंगे, जहां आज के कार्यक्रम के लिए हम अपने सम्माननीय संतों का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, वहां मुकेश भाई से कहेंगे आपसे ओम शांति करके आपका साधुवाद।
ओम ओम शांति, ओम शांति। अयोध्या से पधारे हमारे पूज्य संत महंत रामानंदाचार्य जगत गुरु महाराज जी और हनुमानगढ़ी के परम पूज्य पीठाधीश्वर बलरामदास जी महाराज जी, साथ में महामंडलेश्वर 108 अस्तोष महाराज जी और उसके साथ में हमारे गिरीश महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, आप ब्रह्मा कुमारी फैमिली में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। कुछ ऐसी भ्रांतियां थी जिसको आपके माध्यम के द्वारा शिव बाबा ने खत्म कराया है, बहुत सारे दिलों में ऐसी टीस थी, आपके मुखारविंद से भगवान ने वो काम कराए हैं जिसका जो है दूर तक संदेश जाएगा। अभी साथ में हमारी मनोरमा दीदी महाराज जी जब वहां चले हैं अयोध्या से 7 साल पहले आए थे, हमसे कम से कम दर्जनों बार तो पूछ चुके थे दीदी के बारे में, तो आज जैसे ही दीदी के वक्तव्य आवाज सुना आपने तो कहा ये तो दीदी का मेरी मुलाकात हुई है दादी के उस स्मृति दिवस के समय पर सुबह, तो मुलाकात भी हुई और बहुत प्रसन्नता भी हुई आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और आप सभी ने भी महाराज जी का बहुत उमंग उत्साह भी बढ़ाया है। ओम शांति।
हमारे संतों ने भ्राता मृत्युंजय जी को भी संत बना लिया है, उन्हें सॉल पहनाकर, और बहुत सुंदर ये अभिनंदन। हम वृक्षों का भी वंदन करते हैं, एक वीडियो इस पर देखेंगे, 15,000 सिरोही में जो लगाए गए।
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था और धरोहर उदयपुर की ओर से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
अभी हम 2 मिनट योग करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करेंगे।
नई पहल शुरू की गई थी जिसके तहत 1 माह तक सिरोही जिले के प्रमुख स्थानों पर सघन पौधारोपण किया गया। इसके अंतर्गत कई स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चों को हजारों पौधे वितरित किए गए और साथ ही फार्म हाउस, हॉस्पिटल, गौशाला, पंचायत भवन आमथला, महाकाली मंदिर शमशान घाट, गढ़का पंचायत भवन परिसर, जन चेतना संस्थान और ब्रह्मा कुमारी के परिसर समेत सैकड़ों स्थानों पर तकरीबन 15,000 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के दौरान गांव वालों और बच्चों को मिशन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ साथ राखी बांधकर शुभकामनाएं दी गई। इस वृक्षवंदन कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई बिके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी का सराहनीय प्रयास रहा। ज्ञात हो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था हर वर्ष इस दिशा में अपना सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और आगे भी प्रयासरत रहेगी।